आज है 13 मार्च दिन बुधवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। जीन्स और टी शर्ट पहनकर दक्षिण भारतीय छात्रों से संवाद किया कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने।
The people and the youngsters of Tamil Nadu to realize and understand that this group of people here...
प्रियंका गांधी ने मेरठ के अस्पताल में भर्ती दलित नेता चंद्रशेखर आजाद रावण से मुलाकात की। ब्रिटेन की संसद में ब्रेक्सिट को लेकर सांसद करेंगे अहम मतदान। और ईरान और सऊदी अरब के संबंधों में तालमेल कैसे करेगा पाकिस्तान।
ये बैलेंस बरकरार रखना बड़ा मुश्किल है कि आप बयाकवक सऊदी अरब से भी उतने ही करीब हैं और ईरान से भी उतने ही करीब हैं।
बात होगी भारत और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट मैच की भी, लेकिन सबसे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधुवासिनी से सुनिए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि देश में नकारात्मक और डर के माहौल के बीच आर्थिक प्रगति की उम्मीद नहीं की जा सकती है। राहुल गांधी ने चेन्नई में छात्राओं से मुलाकात के दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी इस देश का मूड बदलेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों को खुश महसूस कराएगी और उन्हें शक्ति संपन्न बनाएगी। छात्राओं ने कांग्रेस अध्यक्ष से रफाल डील और उनके बहनोई रॉबर्ट वाड्रा समेत कई मुद्दों पर सवाल पूछे। ब्रिटेन की संसद में ब्रेक्जिट यानी यूरोपीय संघ से अलग होने के मुद्दे पर बहस हो रही है। ब्रितानी सांसद आज बिना किसी डील के 29 मार्च को ईयू छोड़ने के विकल्प पर मतदान करेंगे। इससे पहले कल सांसदों ने ईयू के साथ संशोधित डील को खारिज कर दिया था। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने अपनी ब्रेक्जिट नीति का बचाव किया है। ब्रिटेन में प्रमुख विपक्षी लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कोर्बिन ने आरोप लगाया है कि जब देश संकट से जूझ रहा है उस वक्त प्रधानमंत्री सरकार की अगुवाई करने में नाकाम साबित हो रही हैं। लेबर पार्टी की सांसद लिज कैंडल ने कहा कि प्रधानमंत्री टेरिजा मे का वक्त पूरा हो चुका है।
There is an issue that the Prime Minister is not capable of changing course. And that is catastrophic. She should stand down.
Right. No one wants to throw.
So that someone can come in and show the leadership that the country needs. She can't change.
मुद्दा ये है कि मुश्किल हालात में प्रधानमंत्री बदलाव करने में सक्षम साबित नहीं हो पा रही हैं। उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए ताकि कोई और आए और नेतृत्व संभाले। देश को नेतृत्व की जरूरत है, वो बदलाव नहीं ला सकती हैं। ये थे सांसद लिज कैंडल के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। भारत के विमानन मंत्रालय ने बोइंग 737 मैक्स विमानों के भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल होने पर रोक लगा दी है। इससे पहले देश में इन विमानों की उड़ान पर रोक लगाया जा चुका है। इथोपिया में बीते रविवार को बोइंग 737 मैक्स 8 विमान क्रैश हो गया था और विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई थी। इथोपियन एयरलाइंस के प्रमुख टेवल्ड ग्रेबरी मैरियम ने बताया कि एयरलाइंस ने सभी बोइंग 737 मैक्स 8 विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी है।
For us, it was appropriate in the extreme precaution of safety that we had to ground the airplanes. So we did immediately on Sunday. I recommend that is the right thing to do because
हमारे लिए ज़रूरी था कि हम अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए इन विमानों की उड़ान पर रोक लगा दें, इसलिए हमने रविवार को ही ऐसा कर दिया और मैं कहूँगा कि सुरक्षा के लिए ऐसा किया जाना सही है। हमें प्राथमिकता के आधार पर अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। ये थे इथोपियन एयरलाइंस के प्रमुख के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सऊदी अरब में आज कई आला मानवाधिकार कार्यकर्ताएं अदालत में पेश हुईं। बीते साल गिरफ्तारी के बाद से कोर्ट में उनकी पहली पेशी थी। अदालत की सुनवाई बंद कमरे में हुई, लेकिन रिपोर्टों में दावा किया गया है कि इन महिला कार्यकर्ताओं पर अभियोग लगाया गया है कि उन्होंने विदेशियों से संवाद करके देश की सुरक्षा को नुकसान पहुँचाया है। मामले की सुनवाई क्रिमिनल कोर्ट में हो रही है, हालांकि पहले सुनवाई स्पेशल टेररिस्ट कोर्ट में होने की बात कही जा रही थी। इन महिला कार्यकर्ताओं में लू जैन अल हैथलू और ईमान अल नफजान शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि वक्त से पहले होने वाली मौतों में से एक चौथाई की वजह इंसानों की ओर से फैलाया जा रहा प्रदूषण और पर्यावरण को हो रहा नुकसान है। इसकी वजह से दुनिया भर में बीमारियाँ भी फैल रही हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 6 साल के दौरान तैयार की गई अपनी रिपोर्ट में कहा कि सिर्फ वायु प्रदूषण की वजह से हर साल 60 से 70 लाख लोगों की असमय मौत हो जाती है। समाचार,
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। मैं हूं राजेश जोशी। नीली जीन्स और टी शर्ट पहने राहुल गांधी माइक लिए आज चेन्नई के एक कॉलेज में युवा छात्र छात्राओं से मुखातिब हुए। उन्होंने दक्षिण भारत के दौरे में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर उत्तर भारत केंद्रीय नीतियों को लागू करने का आरोप लगाया और दक्षिण भारत के लोगों को भरोसा दिया कि उनकी भाषा और संस्कृति को बचाया जाएगा। इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
राहुल गांधी ने आज जीन्स और टी शर्ट पहनकर चेन्नई के एक महिला कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ करीब 1.5 घंटा गुजारे। भरे हुए ऑडिटोरियम में उन्होंने विद्यार्थियों के सभी सवालों के जवाब दिए। एक सवाल था कि अगर वो केंद्र में सरकार बनाए तो वो दक्षिण भारत के लिए क्या करेंगे। राहुल गांधी ने कहा,
टुडेज गवर्नमेंट हैज ए नॉर्थ इंडिया स्पेसिफिक फोकस।
अभी की सरकार देश को उत्तर भारत केंद्रीय दृश्य से देखती है, लेकिन हम मानते हैं कि देश का हर कोना देश का भविष्य बनाने में भूमिका निभाता है। मौजूदा केंद्र सरकार तमिल लोगों की आकांक्षाओं को दबा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी के शब्द। विद्यार्थियों ने ये भी पूछा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों गले लगाए। इसके जवाब में राहुल गांधी ने प्यार के महत्व पर बात की।
लव इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी रिलीजन, वेदर इट्स हिंदूइज्म, इस्लाम।
प्यार हर धर्म का पाया है, वो कुछ भी हो, हिंदू हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, या सिखिज्म हो, या बुद्धिज्म हो। हमें प्रधानमंत्री से किसी तरह का गुस्सा नहीं है, हम ना ही उनसे नफरत करते हैं। 2014 से मोदी जी हमारा विरोध करते आए हैं, लेकिन हम उनसे बहुत सीखा है। क्या आप जिससे सीखते हैं उनसे नफरत करोगे? इसी से आपको भी एक सबक है। अगर वो आपको नफरत देते हैं और आप उनको प्यार दें, इसीलिए हमने उनसे गले लगाया। ये थे राहुल गांधी के शब्द। चेन्नई से राहुल गांधी नागरकोइल गए, जहां उन्होंने तमिलनाडु में डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन की एक बड़ी सार्वजनिक सभा को संबोधित किया और कहा, संस्कृति को नष्ट नहीं होने दिया जाएगा।
அருமையான தலைவர்கள் இந்த தமிழ்நாட்டில் இளைஞர்களுக்கு நான் சொல்கிறேன், அவர்கள் உங்க உரிமையை காக்கிற தலைவர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள். தலைவர் தலைவர் சாரி உள்ளிட்ட அவர் தலைமையிலே we might have small differences in our viewpoint.
विद्यार्थियों के बातचीत के दौरान कई बार तालियां बजी, लेकिन उन्हें सबसे बड़ी तालियां तब पड़ी जब उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के सवाल पर जवाब दिया और कहा कि वो क्या 3,000 विद्यार्थियों के बीच आपके प्रधानमंत्री आपके प्रश्नों का सवाल दे सकते हैं। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
दक्षिण में राहुल गांधी तो उत्तर भारत में उनकी बहन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। उत्तर प्रदेश के दलित मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के दलित नेता और भीम आर्मी के संयोजक चंद्रशेखर आजाद रावण से मिलने मेरठ के एक अस्पताल में पहुंची। चंद्रशेखर आजाद को दिल्ली मार्च के दौरान यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बाद में तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस मुलाकात के पीछे की राजनीति समझने के लिए लखनऊ चलेंगे थोड़ी देर में। अभी मुझे बताया गया है कि हमारे वहां पर जो साथी हैं समीर आत्मज मिश्र, थोड़ी देर पहले हमारे साथ फोन पर थे, लेकिन फोन संपर्क कट गया है। जैसे ही समीर आत्मज मिश्र से ये हमारा संपर्क बनता है, हम बात करेंगे प्रियंका गांधी की उत्तर भारत में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति पर। लेकिन अब बात करते हैं एक और विषय की। आपको याद होगा इसी रविवार को इथियोपिया में हुई एक विमान दुर्घटना में जहाज में सवार सभी 157 लोग मारे गए थे। ये बोइंग 737 मैक्स 8 मॉडल का जहाज था। इसके बाद भारत सरकार ने इस विमान के भारत में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। यही नहीं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आज शाम 4 बजे से इन विमानों के भारतीय आकाश से गुजरने पर भी पाबंदी लगा दी है। हमारी सहयोगी सर्वप्रिया सांगवान के पास और जानकारी है। मैंने कुछ ही देर पहले उनसे पूछा कि सरकार के आदेश का क्या असर पड़ेगा।
दरअसल 5 महीनों के अंदर अंदर दो इतने बड़े विमान हादसे हुए हैं जिनमें 346 लोग मारे गए, और इन दोनों ही दुर्घटनाओं में एक बात कॉमन थी, दोनों विमान बोइंग 737 मैक्स 8 थे। भारत की जो एविएशन अथॉरिटी है DGCA ने वो फैसला किया है कि इन विमानों को तब तक उड़ान ना भरने दी जाए जब तक इनमें सुरक्षा के लिहाज से बदलाव ना हो जाए। लेकिन ये डर क्यों है, क्योंकि पिछले साल जकार्ता से एक बोइंग 737 मैक्स 8 ने उड़ान भरी थी और कुछ ही देर में कंट्रोल से बाहर हुआ और जावा समुद्र में जा गिरा। और बीते रविवार को इथियोपिया से नैरोबी के लिए एक विमान उड़ा था, यही विमान जो कुछ मिनटों में ही क्रैश हो गया और एक भी यात्री नहीं बचा।
और जाहिर है भारत में भी बहुत सारी जो विमान कंपनियां हैं वो ये विमान उड़ाती होंगी।
बिल्कुल, यहां पर स्पाइस जेट और जेट एयरवेज के पास ये वाले विमान है, ये मॉडल है। लेकिन अब क्योंकि DGCA ने जो फैसला ले लिया है तो उसके बाद अब ये लोग नहीं उसे उड़ा पाएंगे। और दूसरा कि अगर किसी और देश से किसी और एयरलाइन कोई इस्तेमाल कर रही है और भारत के एयर स्पेस में वो आ रही हो उस वक्त, किसी और देश से किसी और देश भी जा रहे हो, वो भी अब भारत के एयर क्षेत्र में मतलब वो नहीं
भारत के आसमान से वो गुजर भी नहीं सकेंगे,
नहीं जा सकेंगे।
आखिर इसी खास एयरक्राफ्ट को लेकर के, हवाई जहाज को लेकर इतनी चिंता क्यों है, क्योंकि हवाई जहाज तो तमाम उड़ते हैं और दुर्घटनाग्रस्त भी होते रहे हैं।
क्योंकि 5 महीनों में ही एक के बाद एक ऐसी दुर्घटना हुई और इन दोनों की अभी क्रैश होने की ठीक से वजह पता नहीं चल पाई है और कुछ मिनटों के बाद ये क्रैश हो गए। दोनों ही विमानों में एक कॉमन बात थी कि जब पायलट ने उड़ान भरा और उसने कहा कि उन्हें वापस लैंड करवा लिया जाए क्योंकि जो विमान है वो कंट्रोल से बाहर हो रहा है। दूसरा जो शुरुआती रिपोर्ट ये भी आई है उससे पता चलता है कि जो अक्टूबर वाला जो एक्सीडेंट हुआ था उसके सेंसर में कुछ प्रॉब्लम हुई, प्लेन के सेंसर में। तो एक प्लेन का सबसे आगे का हिस्सा होता है जिसे एयरक्राफ्ट नोज कहते हैं और अगर ये बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाता है तो प्लेन की स्पीड रुक जाती है और प्लेन किसी पत्थर की तरह नीचे आ गिरता है। तो बोइंग 737 मैक्स में एक नई टेक्नोलॉजी लाई गई थी कि जब प्लेन कोई खतरा सेंस करे तो वो एयरक्राफ्ट नोज को नीचे की तरफ दबाए। और तो जो शुरुआती रिपोर्ट आ रही है उससे पता चलता है कि जो अक्टूबर वाला एक्सीडेंट हुआ वो प्लेन के सेंसर में कुछ प्रॉब्लम हुई जिससे इस नई टेक्नोलॉजी को लगा कि प्लेन का जो एयरक्राफ्ट नोज है वो ऊंचा होने वाला है और सोचे कि 12 मिनट के अंदर ही प्लेन क्रैश हो गया।
तो ये मुख्य समस्या जो है इस विमान की जो बनावट है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको लेकर के।
हालांकि जो रविवार को जो दुर्घटना हुई है उसके प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है और जिससे पता चल सकेगा कि आखिर उन आखिरी मिनटों में क्या हुआ। तो जो ब्लैक बॉक्स होता है उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जिससे पता चलेगा कि पायलट के बीच में क्या बात हो रही थी, इंजन में किस तरह का शोर हो रहा था, और एक होता है FDR फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर जिससे पता चलेगा कि उस टाइम जो फ्लाइट थी उसकी क्या ऊंचाई थी, कितनी स्पीड थी, क्या वर्टिकल एक्सेलरेशन था, इन सब के बारे में। तो ज्यादातर जो पता चल पाएगा कि इनका क्या कारण रहा वो अब इस ब्लैक बॉक्स से ही निकलेगा।
केंद्र सरकार ने बोइंग 737 मैक्स 8 मॉडल के भारत में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। ये जानकारी दे रही थी सर्वप्रिया सांगवान।
कहां पहुंच पाया बिहार, कैसी है बिहार की राजनीति, क्या चाहता है बिहार का युवा, बिहार की नब्ज टटोलने पहुंच रही है BBC हिंदी की टीम पटना। चर्चा में शामिल होंगे कई राजनेता और सवाल पूछ पाएंगे आप भी। इस बार बोलेगा बिहार। 15 मार्च को पटना के अधिवेशन भवन में 12 बजे दोपहर से।
दिन भर कार्यक्रम आप BBC हिंदी से वैसे सुन रहे हैं, मैं हूं राजेश जोशी। आइए अब चर्चा करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय विषय की। ब्रिटेन के सांसद आज रात तय करेंगे कि उनका देश यूरोपीय यूनियन से बिना किसी समझौते के बाहर होगा या समझौता करके EU छोड़ेगा। ब्रेक्जिट एक ऐसा मुद्दा है जिसने इन दिनों ब्रिटेन में ऊहापोह की स्थिति पैदा कर दी है। प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने यूरोपियन यूनियन छोड़ने के लिए जो कार्यक्रम पेश किया है, सांसदों ने उसे पहले ही भारी मतों से खारिज कर दिया है। दोस्तों, ये पेचीदा मुद्दा जरूर है लेकिन ब्रिटेन पर ही नहीं बल्कि दुनिया के एक बड़े हिस्से पर इसके दूरगामी असर पड़ने वाले हैं। लंदन में BBC संवाददाता गगन सभरवाल इस महत्वपूर्ण विषय पर नजर रखे हुए हैं। मैंने कुछ देर पहले टेलीफोन पर उनसे संपर्क किया और पूछा आज रात को संसद में होने वाला ये मतदान आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है।
जैसे कि आपको पता है कि कल शाम को ब्रिटिश MPs ने टेरेसा मे के रिवाइज ब्रेग्जिट डील को रिजेक्ट किया था, तो इसकी वजह से आज फिर से ब्रिटिश MPs हाउस ऑफ कॉमन्स में गैदर होंगे और फिर से एक और नया वोट होगा। लेकिन आज का जो वोट है, दे विल वोट ऑन नो ब्रेग्जिट डील। और अगर आज ब्रिटिश MPs ने नो ब्रेग्जिट डील को एक्सेप्ट किया, फिर उसका ये मतलब होगा कि 29 मार्च को UK EU से निकल जाएगा। लेकिन लेट्स अज्यूम उन्होंने फिर से आज भी रिजेक्ट कर दिया नो ब्रेग्जिट डील, फिर इसका ये मतलब होगा कि कल फिर से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एमपीज को और एक मौका दिया है और वो फिर से हाउस ऑफ कॉमन्स में गैदर होंगे और एक नया वोट होगा, लेकिन कल का वोट होगा आर्टिकल 50 एक्सटेंशन के ऊपर, जिसका मतलब है कि आर्टिकल 50 वो मैकेनिज्म है जो ब्रेग्जिट प्रोसेस को शुरू करेगा। अगर कल ब्रिटिश एमपीज ने आर्टिकल 50 एक्सटेंशन को एक्सेप्ट किया तो इसका ये मतलब होगा कि टेरेसा मे को ईयू वापस जाके एक्सटेंशन की मांग रखनी पड़ेगी।
ये जो आपने पूरी बात मुझे बताई, ये दरअसल इतनी पेचीदा बात है कि इसमें हम लोग जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे जो श्रोता हैं, उनको ये समझने में बहुत टाइम लगेगा, जैसे मुझे ये समझने में बहुत टाइम लगेगा कि ये जो नो डील ब्रेक्सिट है, इसका मतलब क्या ये समझा जाए कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से निकल जाएगा और बिना किसी समझौते के?
नो डील ब्रेग्जिट का ये मतलब है कि यूके ईयू से निकल जाएगा विदाउट एनी डील। और मैंने बहुत सारे एमपी से बात की थी इन द लास्ट कपल ऑफ डेज, जो साउथ एशियन बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, और उन सब ने मुझे बोला कि आज वो सब नो डील ब्रेग्जिट को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि उनको वेरी स्ट्रांगली लगता है कि नो डील ब्रेग्जिट यूके के फ्यूचर के लिए बहुत ही हानिकारक है।
इसके बाद की स्थिति क्या होगी, ये आप मुझे बताइए।
हाँ, इसके बाद ये होगा कि यू नो, अगर हमने नो डील ब्रेग्जिट एक्सेप्ट किया, फिर ऑटोमेटिकली ईयू लॉज जो हमें गवर्न करते हैं, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, वो सब विल सीज टू एग्जिस्ट, वो सब यू नो ख़त्म हो जाएंगे। तो और इसकी वजह से कंट्री में और केओस और कन्फ्यूजन होगा।
सिक्योरिटी, इसका रोजगार पर असर पड़ेगा,
जरूर पड़ेगा,
सिक्योरिटी पर असर पड़ेगा,
हाँ,
और अर्थव्यवस्था पे, इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा,
जरूर, और लीगल सिस्टम पे भी असर पड़ेगा।
ब्रिटेन के लोग तो 51% लोग कह चुके हैं हमें ईयू नहीं चाहिए, हम उससे अलग होना चाहते हैं, हम एक अलग आइलैंड कंट्री हैं। अब क्या उनमें कोई हृदय परिवर्तन, कोई नई बात सोची जा रही है कि अगर हम ईयू में रहते तो अच्छा रहता, इस तरह की कोई सोच आ रही है क्या?
जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो मैं तो बहुत शॉक थी पर्सनली, मुझे यकीन नहीं हुआ कि 51% लोगों ने वोट किया ईयू छोड़ने का, यू नो। एंड उसके बाद मुझे पता नहीं अगर आपको पता है, गूगल में सबसे ज़्यादा जो सर्च का क्वेश्चन था वो था व्हाट इज़ ईयू। और 2 साल के बाद मुझे साउथ एशियन कम्युनिटी के लोग जिनसे मैं मिली थी, उन्होंने सब जिन्होंने ब्रेग्जिट के लिए वोट किया था, उन सब ने मुझे बोला कि उनको एक सेकंड रेफरेंडम चाहिए, और अगर सेकंड रेफरेंडम होता है वो वोट करेंगे रिमेन के लिए, नॉट फॉर अ ब्रेग्जिट।
ये थी लंदन से बीबीसी संवाददाता गगनदीप सभरवाल। हमने कुछ ही देर पहले आपसे वादा किया था कि हमारे संवाददाता समीर आत्मज मिश्र लखनऊ में है, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब भी टेलीफोन लाइनें व्यस्त हैं, संपर्क बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, तो लगता है कि प्रियंका गांधी की चंद्रशेखर आज़ाद रावण से जो मेरठ के अस्पताल में मुलाकात हुई, उसके बारे में हम और जानकारी आपको नहीं दे पाएंगे। एक नज़र डालते हैं बीबीसी हिंदी के पहले पन्ने पर, 3-4 खबरें हैं जो बहुत दिलचस्प आपको लगेंगी। सबसे ऊपर है, भारत को इतने झटके क्यों दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। दूसरी खबर है, गुस्से में अपनी ही बर्बादी कर रहा है पाकिस्तान, और दुनिया की बर्बादी ये वजहें, भारत कितना करीब, यानी दुनिया जब बर्बाद होती है तो उसकी क्या कारण है और भारत उसके कितना करीब है, इस तरह की बहुत सारी खबरें हैं। मसूद अजहर पर चीन के रुख से गहराया रहस्य, ये भी आपको bbchindi.com के पन्ने पर मिलेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दुनिया जहान की। भारत की तरह ईरान ने भी पश्चिम पाकिस्तान पर चरमपंथ को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलवामा हमले के ठीक एक दिन पहले ईरान के 27 रेवोल्यूशनरी गार्ड्स एक चरमपंथी हमले में मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने पाकिस्तान से सीधे जवाब मांगा, तब ऐसा लगा था जैसे पाकिस्तान के खिलाफ भारत और ईरान एक हो गए हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? दुनिया जहान में सुनिए बीबीसी संवाददाता संदीप सोनी की प्रस्तुति।
A suicide bomber has killed at least 27 members of Iran's elite Revolutionary Guard.
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भारतीय सुरक्षा बलों पर आत्मघाती हमले से ठीक एक दिन पहले 13 फरवरी को ईरान के अशांत सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को ले जा रही एक बस पर आत्मघाती हमला हुआ जिसमें ईरान के 27 जवान मारे गए। सुन्नी मुस्लिम चरमपंथी समूह जैश अल अदल ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। ईरान का सीधा आरोप है कि पाकिस्तान की फौज और खुफिया एजेंसी इन चरमपंथियों को पनाह देती है। ईरान ने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी कि उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी, लेकिन पाकिस्तान इस आरोप को गलत बताता है। इस्लामाबाद में बीबीसी संवाददाता आसिफ फारूकी कहते हैं,
ईरान और पाकिस्तान का जो रिश्ता है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। कभी ऐसे लगता है कि दोनों ब्रदर मुल्क हैं, यानी भाई भाई हैं। आजकल जो सिचुएशन डेवलप हो रही है वो थोड़ी सी हॉस्टाइल या रिलेशनशिप में नेगेटिविटी जो है वो ज्यादा है। पाकिस्तानी अथॉरिटीज जो हैं उनका मानना ये है कि ये ईरान बेस्ड ग्रुप है। जैसे ये ईरानियन बॉर्डर गार्ड्स की नजर से बच के इधर उधर आते जाते हैं, उसी तरह पाकिस्तानी बॉर्डर गार्ड्स की भी नजर से बच जाते हैं। तो इस पे ये ब्लेम करना कि पाकिस्तानी स्टेट इसमें इन्वॉल्व है, ये थोड़ी जाती है, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का मौकफ है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में बहुसंख्यक मुसलमान सुन्नी हैं, जबकि ईरान में शिया मुसलमानों का बोलबाला है। पाकिस्तान और ईरान के संबंध में शिया सुन्नी समीकरण अहम भूमिका अदा करते हैं।
एक जमाना था जब ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल था इस शिया सुन्नी वाले मामले का, लेकिन अब इतना ज्यादा नहीं है। हम 80s की बात कर रहे हैं, जब पोस्ट ईरानियन रेवोल्यूशन पाकिस्तान में एक बहुत एक्सट्रीमिस्ट सुन्नी ग्रुप जो है वो बना था सेक्टेरियन ग्राउंड्स पे, और उसको कहा जाता था कि सऊदी गवर्नमेंट की हिमायत हासिल थी। फिर उसके मुकाबले में पाकिस्तान में ही शिया ग्रुप्स बनने लगे जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्हें ईरानियन गवर्नमेंट की हिमायत हासिल है। और यहाँ पे एक बहुत लंबी हमने शिया सुन्नी जो है सेक्टेरियन वायलेंस देखा है बहुत अरसे तक, लेकिन पिछले दिनों में ये जो वायलेंस है ये कम हो गया है। शिया ग्रुप्स भी बैन कर दिए हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, सुन्नी ग्रुप्स भी बैन कर दिए हैं, तो उस तरह से वो बहुत कम हो गया है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल सऊदी लेड जो कोएलिशन अगेंस्ट टेररिज्म है उसमें पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के साथ खड़ा हुआ है और ईरान जो है उसके मुखालिफ है। तो उसकी वजह से पाकिस्तान पे ये इल्जाम ईरानियन लगाते हैं कि वो एंटी शिया अलायंस का मेंबर है, इसलिए वो थोड़ा सा डोमेन में जा रही है बात अब दोबारा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो शायद अब उस डोमेन में जा रहे हैं कि शिया और सुन्नी के दरमियान जो है जो फर्क है वो उसमें शायद अब उसकी एक झलक नजर आना शुरू हो रही है।
शीत युद्ध के जमाने में पाकिस्तान और ईरान दोनों में सहयोग चरम पर था, दोनों अमरीकी खेमे में थे, लेकिन इस्लामी क्रांति के बाद पाकिस्तान और ईरान के बीच तनाव बढ़ना शुरू हुआ। सऊदी अरब ने इसमें अहम भूमिका निभाई। भारत के पूर्व राजनयिक विवेक काटजू बताते हैं,
सऊदी अरेबिया अपने आप को इस्लामी उम्मा का नेता मानता है, दूसरी तरफ ईरान भी समझता है कि वो मुसलमानों का नेता है, उम्मा में उसकी एक हैसियत है। दोनों ममालिक ने पाकिस्तान में गुटों को समर्थन दिया और उन गुटों ने जैसे सिपाही साहिबा, लश्कर जंगवी, इन गुटों ने हिंसा का सहारा लिया और एक दूसरे पे टूटे। 2016 के बाद ये देखा गया कि ईरान ज्यादा असर्टिव हुआ, उसने अपना जरा जोर दिखाने की कोशिश करी। ये जब अमरीका ईरान की न्यूक्लियर डील हो गई थी उसके बाद ये खास देखा गया कि क्षेत्र में ईरान ने अपना दबदबा फिर से कायम करने की कोशिश करी।
इसी कड़ी में ईरान ने पुलवामा में भारतीय सुरक्षा बलों पर हुए आत्मघाती हमले की पुरजोर भर्त्सना की। भारत की विदेश नीति में ईरान को सहयोगी माना जाता है।
चाबहार जो बंदरगाह है वो डेवलप हो रहा है, भारत उसमें सहयोग दे रहा है, उससे एक पूरा अल्टरनेट रूट बनेगा मध्य अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया की तरफ जाने के लिए, वो भी एक सहयोग का जरिया है। तेल के मामले में, गैस के मामले में, नेचुरल गैस के मामले में भी सहयोग चल रहा है। ये जरूर है कि अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से इस सहयोग में कुछ रुकावट पड़ती है, लेकिन मैंने देखा है कि दोनों देश रास्ता निकालते हैं कि सहयोग जारी रहे।
लेकिन इस सहयोग का हमेशा ये मतलब नहीं निकाला जा सकता कि भारत और ईरान एक तरफ हैं और पाकिस्तान दूसरी तरफ। इस्लामाबाद में बीबीसी संवाददाता आसिफ फारूकी इसका एक कारोबारी पहलू बताते हैं।
पाकिस्तान और ईरान कई सालों से ये कोशिश कर रहे हैं कि आपस की ट्रेड जो है उसको एक सर्टन लेवल तक लेके जाएं, जो कि इस वक्त बहुत ही कम है, लेकिन वो कोशिशें कामयाब नहीं हो रही। दोनों मुल्कों के दरमियान जो बॉर्डर टेंशन है वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रीजन है, लेकिन उसके अलावा मिसाल के तौर पे ईरान से अगर कोई चीज लेना भी चाहता है तो वो अमरीकी सैंक्शंस की वजह से वो नहीं ले पाता उस तरह से, स्मगलिंग बहुत ज्यादा होती है। तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ब्लैक इकोनॉमी अगर आप ये कहें या ब्लैक ट्रेड आप ये कहें वो तो बहुत ज्यादा है।
शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के प्रति ईरान का रवैया कभी नर्म तो कभी गर्म रहा। पाकिस्तान के लिए भी ये चुनौती लगातार बनी रही कि वो सऊदी अरब या ईरान दोनों में से किसके ज्यादा करीब नजर आए।
जिसे कहते हैं ना पल में तोला पल में माशा, कभी ठीक हो गए कभी खराब हो गए। कोई स्ट्रेटेजिक किस्म की चेंज नहीं आई है गवर्नमेंट बदलने के बाद पाकिस्तान में। ये जरूर है कि सऊदी अरब का जो मिलिट्री अलायंस है और जो सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की पिछले दिनों में इतनी कुर्बत हुई है, खास तौर पे इंडिया के साथ जो टेंशन हुई उसमें जो सऊदी अरब ने रोल प्ले किया, फिर उससे पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए डॉलर्स दिए काफी सारे सऊदी ने, फिर सऊदी प्रिंस पाकिस्तान आए, तो उसकी वजह से सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात जो है वो थोड़े करीब भी हुए हैं। और ये एक नेचुरल बात है कि जब भी आप सऊदी अरब के ज्यादा करीब होंगे तो ईरान से आप लाजमन दूर होंगे। ये बैलेंस बरकरार रखना बड़ा मुश्किल है कि आप बैक वक्त सऊदी अरब से भी उतने ही करीब हैं और ईरान से भी उतने ही करीब हैं। और दो के डिप्लोमेसी में ये सब होता है, लेकिन पाकिस्तान ये फाइन बैलेंस जो है उसको शायद बरकरार नहीं रख पा रहा। तो जब वो सऊदी अरब से ज्यादा करीब होते हैं, जो कि आजकल वो हैं, तो फिर ईरान से थोड़ी सी दूरियां और गलत फहमियां जो है वो बढ़ने लगती हैं।
संदीप सोनी, बीबीसी, दिल्ली।
दुनिया जहान पर अपनी राय रखने के लिए कलम उठाइएगा जरूर, मगर थोड़ी देर में, क्योंकि खेल समाचार अभी बाकी हैं। और आज दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के बीच टक्कर जारी है। सूर्यांशी पांडे की नज़र खेल पर बनी हुई है और मेरी नज़र सूर्यांशी पांडे पे है, जो ठीक मेरे सामने बैठी हुई है। सूर्यांशी, क्या चल रहा है? धड़कने बढ़ी हुई हैं लोगों की?
मुझे लगता है कि धड़कने बढ़ी नहीं बल्कि अब धड़कने रुक सी गई हैं, क्योंकि एक जो मुकाबला था उसका जो जोश है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत जो है वो 6 विकेटों के नुकसान पर 139 रन
मैंने जो देखा था तो 139 रन था।
हाँ हाँ, और अब जो है केदार जाधव और भुवनेश्वर कुमार जो है बल्लेबाजी कर रहे हैं और 4 रन बनाकर 10 गेंदों में उन्होंने 4 रन बनाए हैं। और अब देखिए 32वां ओवर वो शुरू हो चुका है और
146 रन हो गए हैं।
हाँ
देखिए,
और अब 47 हो गए। अब केदार जाधव जो है वो 16 रन बनाकर 16 गेंदों पर उन्होंने 16 रन बनाए हैं। और अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो 271 रनों का लक्ष्य जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने दिया था, लेकिन लग नहीं रहा कि भारतीय टीम उसके आसपास भी पहुंच पाएगी। 9 विकेटों के नुकसान के साथ भारत बल्लेबाजी करने फिर अभी उतरी थी। और अगर हम बात करें टॉस की, तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता था और बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। बट सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि यहाँ पर 2 बदलाव किए गए थे कि विराट कोहली को जो है वो 4th नंबर पर अभी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर रखा गया था, बट अब वो 3rd नंबर पर आए थे, पर उसका भी कोई फ़ायदा होते हुए दिखा नहीं, क्योंकि वो 20 रनों के बनाकर बस वो आउट हो गए।
यानी ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त हावी है और जहां से हम प्रसारण कर रहे हैं एक ही, मुझे लगता है 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे यहां से फिरोजशाह कोटला मैदान है। बहरहाल सूर्यांशी पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कार्यक्रम समाप्त करने का समय हुआ है। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर।
बीबीसी समाचार। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि देश में नकारात्मक और डर के माहौल के बीच आर्थिक प्रगति की उम्मीद नहीं की जा सकती है। ब्रिटेन की संसद में ब्रेग्जिट यानी यूरोपीय संघ से अलग होने के मुद्दे पर बहस हो रही है। भारत के विमानन मंत्रालय ने बोइंग 737 मैक्स विमानों के भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल होने पर रोक लगा दी है। सऊदी अरब में आज कई आला मानवाधिकार कार्यकर्ताएं अदालत में पेश हुईं। बीते साल गिरफ्तारी के बाद से कोर्ट में उनकी ये पहली पेशी थी। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि वक्त से पहले होने वाली मौतों में से 1/4 की वजह इंसानों की ओर से फैलाया जा रहा प्रदूषण और पर्यावरण को हो रहा नुकसान है। इसकी वजह से दुनिया भर में तमाम बीमारियां भी फैल रही हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 6 साल के दौरान तैयार की गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सिर्फ वायु प्रदूषण की वजह से हर साल 60 से 70 लाख लोगों की मौत हो जाती है। बीबीसी समाचार।
ये थे अब तक के मुख्य समाचार और इस वक्त स्कोर हुआ है 6 विकेट भारत खो चुका है 149 रन बना करके। मैं राजेश जोशी फिलहाल आपसे अनुमति चाहता हूँ। आज स्टूडियो मैनेजर थे राजेश चौहान। आप सबसे अगली मुलाकात होगी कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में। तब तक के लिए शुभरात्रि।